जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। हमारा नाता है कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, सीता है, इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं, उस धरती पे पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की रीत सदा।
ओम शांति। प्रश्नों की मुरली में था कि भगवान कहाँ का दीवाना है, भारत का दीवाना है, क्योंकि भारत में ही बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, खोज हुई है। और उस अनेक प्रकार की खोजें अर्थात अनुसंधानों की बदौलत पूरे संसार में बहुत सारे ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। तो इसी संदर्भ में जो जीरो की बात आती है, जीरो के अनुसंधान के बारे में भी बहुत सारे मत मतांतर हैं। कोई किसी का नाम लेता है तो कोई किसी का, अलग अलग कालखंड में उसका जो अनुसंधान किया गया। फिर भी अधिकतर लोगों का मानना है, उनका मत है कि आर्यभट्ट ने इसकी खोज की। और समय समय पर कैसे उस जीरो का महत्व रहा अलग अलग क्षेत्रों में, उसके बारे में बहुत सारे मत मतांतर है। लेकिन हम यहां जो विषय पर चर्चा करेंगे, जीरो बाप के हीरो बच्चे, तो ये स्पिरिचुअल जीरो है। यहां जो स्पिरिचुअल मैथमेटिक, उस पर चर्चा करेंगे। तो बाप को जीरो क्यों कहा जाता है? तो देखा जाए तो जीरो जो है वो एक विशेष गुण का सूचक है। कौन सा गुण हो सकता है? वो संपूर्णता और निर्माणता अर्थात निरहंकारिता का। जीरो जो है वो निरहंकारिता का सूचक है। जीरो सभी संख्याओं के लिए एक श्रृंगार है। बिना जीरो के जो संख्याएं वो अधूरी मानी जाती हैं। और जीरो जो सभी से मिल जाता है और उसको किसी के साथ मिलने का अहंकार भी नहीं है, और ना मिले तो भी अहंकार नहीं है। और जीरो है तो सभी का अस्तित्व है। जैसे यहां बैठे हैं, इस हॉल में अगर कुछ भी सामान नहीं पड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? यहां जीरो है। तो जीरो ने इन चीजों को आने के लिए पहले प्राथमिकता दी है। अगर जीरो नहीं होता तो कैसे आती है चीजें? पहले से अगर चीजें यहां भरी होती तो कैसे आती? तो जीरो ने पहले दूसरी चीजों को प्राथमिकता दी है आने की। और इन चीजों के आने के बाद भी फिर जीरो का अस्तित्व फिर भी है, लेकिन उसको अहंकार नहीं है फिर भी। इसलिए बाबा जो है ज्ञान गुण शक्तियों अनेक प्रकार के खजानों का सागर है, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं है बाबा को। रोज बच्चों को नमस्ते करते हैं, अपने से आगे रखते हैं। तो जीरो जो हमारी सर्वोच्च स्थिति है, जैसे बाबा ने अंत में जो तीन मंत्र दिए थे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो निरहंकारी माना अहंकार, तो उसमें वास्तव में निर्विकारी सब विकारों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अहंकार निरहंकारी भाव। अगर हम सब प्रकार विकारों को जीत लेते हैं फिर भी मन में एक जीत का संकल्प रहता है कि हमने इन पर जीत प्राप्त की है, फिर भी एक सूक्ष्म अहम है, लेकिन बाबा को वो भी नहीं है। तो जो निरंकारिता निर्माणता का गुण है, ये वास्तव में हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग पर, आध्यात्मिक पथ पर उन्नति का एक विशेष गुण है, निरंकारिता। और ये जो गुण है ये हमें उस स्थिति में स्थित रह के ही प्राप्त हम उसको कर सकते हैं। और सारे ज्ञान का आधार फाउंडेशन क्या है? जीरो ही है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो बिंदु है। अगर ये बोल भी रहा तो कौन बोल रहा है? बिंदु बोल रहा है। एक मुरली है एक बाबा की बिंदु के ऊपर, देख रहा तो कौन देख रहा है, बिंदु देख रहा है, सुन रहा तो कौन सुन रहा है, बिंदु सुन रहा है। अगर हम इससे विस्मृत हैं, ये हमें स्मृति नहीं है, तो जो ज्ञान है बिंदु अर्जित नहीं कर पाता, फिर वो हमारा फिर कान रास्ता की रह जाता है। इसलिए बाबा ने सबसे पहले आके हम सबको ये पहला पाठ पक्का कराया कि तुम एक आत्मा हो, अर्थात जीरो हो, बिंदु हो। और जीरो अर्थात जैसे बाबा ने कहा, अब ये जितना भी आज तक तुम बच्चों ने पढ़ा हुआ है शास्त्रों का, वो सब भूल जाओ, वो सब भूसा है, अपनी बुद्धि को खाली कर दो। जीरो, जीरो बैलेंस। तो जीरो, जब तक हमारी स्थिति जीरो नहीं है तब तक हमारा उस जीरो से प्यार भी नहीं होगा, उससे हमारी समानता नहीं है। तो उसके समानता का, समीपता का अनुभव करने के लिए ये अति आवश्यक है कि हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनल हमारा जो स्वरूप है, उसमें स्थित होने के लिए लंबे समय की प्रैक्टिस, ये मर्जी वा जन्म है। बाबा ने कहा ये देह भी आपकी नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में जो विघ्न या अनेक प्रकार के जो बंधन हैं, वो देह की बदौलत ही आते हैं। चाहे वो देह के संबंध हैं, चाहे वो देह के पदार्थ हैं, चाहे वो देह के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, तो ये हमारे जीवन में उन्नति में बाधक आते हैं। हमारी स्थिति गिरती कब है, जब देह की स्मृति होती है, और उत्थान कब होता है, जब आत्मा की स्मृति होती है, देह की विस्मृति होती है। तो जीरो जो है, जीरो का विशेष महत्व है इस ब्राह्मण जीवन में। बाबा ने कहा ये जो जीरो है, जीरो आत्मा ही ऊपर से आई है, और जब ऊपर से उतरे थे इस धरा पर तो वो संपूर्णता को प्राप्त थी, जो सर्वगुण संपन्न, जो बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई थी पिछले संडे को, कि वो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो हमारी परम धाम की स्थिति है। और जीरो यात्रा ही हमारी 5000 साल की रही है। अगर हमें इस स्थिति को सहज रूप से, सरल तरीके से प्राप्त करना है, तो बाबा जो बार बार हमको जो ड्रिल सिखाते हैं, जो एक 4 दिन पहले बाबा ने हमको एक हथियार भी दिया था, कौन सा एक हथियार दिया था, ये हथियार साथ में रखो तो माया नहीं आएगी, सुदर्शन चक्र। हाँ, तो हमारा परम धाम से लेकर जो यात्रा रही 5000 साल की अभी तक की, सुदर्शन चक्र अर्थात स्वयं का दर्शन, कैसे आत्मा परम धाम से आई है जीरो के रूप में, और जब वो जीरो थी, अपनी पूरी शक्तिशाली स्थिति में स्थित थी, पूरी ऊर्जा थी उसमें, तो वो असली सुख शांति की अनुभूति में थी। और अब ब्राह्मण जन्म में बाबा ने इसी स्थिति, जब वैसे भी हम सबने इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव किया ही होगा सबने, कि जो हमारी अशरीरी स्थिति होती है, जो बीज रूप स्थिति होती है, वो स्थिति बहुत शक्तिशाली है। और अगर हम वो 1 सेकंड 2 सेकंड भी अनुभूति कर लेते हैं, तो वो स्थिति हमको लंबे समय तक चलाती रहती है, और उस स्थिति से अनेक प्रकार के संस्कारों का परिवर्तन होता है, एक मन को नई दिशा मिलती है, और उस अशरीरी अवस्था से अतीन्द्र सुख की अनुभूति होती है। वो अशरीरी अवस्था बाप के प्यार का अनुभव कराती है, शांति से आत्मा जैसे अपने को भरपूर करती है, और उस जीरो की अवस्था से ही इस कर्म क्षेत्र पर रहने से अनेक प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जैसे साक्षी अवस्था है। साक्षी अवस्था की अनुभूति भी हम जीरो की स्थिति में रहकर ही कर सकते हैं, सर्वोच्च स्थिति में रहकर। न्यारापन, वो भी हमारी जीरो की स्थिति है, डिटैचमेंट। फिर हम जो ट्रस्टी होकर कर्म करते हैं, निमित्त भाव, कर्ण क्रावन हार की स्थिति, ये सब जीरो की अवस्थाएं हैं। उस अवस्था में स्थित रहने से ही आत्मा उसकी अनुभूति कर सकती है, और दूसरों को भी हम उसकी अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए यज्ञ के जो शुरू के जो 14 साल रहे, जो हमारे दादियों ने जो यज्ञ के पिलर हैं, आधार स्तंभ हैं, उनका विशेष जो अभ्यास, जो ब्रह्मा बाबा का भी विशेष अभ्यास किस चीज पर रहा, उस जीरो स्थिति में स्थित रहने के लिए। मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, या सभी आत्माएं हैं। तो ये हमारा जो पुरुषार्थ का आधार है, उन्नति का जो साधन है, ये हमारी जीरो स्थिति को परिपक्व करने के लिए अति आवश्यक है कि स्वयं के ऊपर इस पर विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। जब तक हमारी ये स्थिति पक्की नहीं है तो फिर हमारा जो पार्ट है वो हीरो नहीं हो सकता। इसलिए जीरो बाप आते हैं, हमेशा बाप जीरो की स्थिति में स्थित रहते हैं, क्योंकि संख्याओं में आने से गड़बड़ है। जीरो विभाजित नहीं होता है, जीरो अविभाज्य है, अखंडित है वो, लेकिन बाकी सब संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, उनके टुकड़े होना संभव है, प्लस माइनस होते हैं, लेकिन जीरो जो है अविभाज्य है, वो खत्म नहीं होता। और जीरो में से जीरो निकालो तो भी जीरो ही रहेगा वो, लेकिन जीरो 200 संख्या को आगे बढ़ा देगी, या तो जीरो कर देगी सबको या आगे बढ़ाएगी। इसलिए ये जो जीरो है, इस स्थिति में स्थित रहने से ही फिर हमारे जो आंतरिक गुण है वो फिर प्रदर्शित होते हैं। जैसे जो हमारे में विशेषताएं हैं, विशेषताएं तो पहले भी थी, लेकिन वो विशेषताएं ईश्वरीय कार्य में नहीं लग पा रही थी। जो हमारा इस सृष्टि के विशेष हीरो पार्ट है, वो तभी से प्रारंभ होता है जब हम उस जीरो की स्थिति में स्थित होते हैं और उस जीरो बाप का सुनते हैं, उस जीरो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो ये हमारा हीरो पार्ट प्ले होता है, जीरो बन के सुनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अगर मिलन बना रहा है तो कौन बना रहा है? बिंदु बिंदु से मिलन बना रहा है ना। 84 जन्मों का पार्ट प्ले किसने किया? बिंदु ने किया। तीनों लोगों की सैर कौन करता है? बिंदु करता है। सारे वृक्ष का जो सार समाया है किसमें समाया हुआ है? बिंदु में है। तुमको सारा कुछ समेट के, विस्तार को समेट के सार में, अर्थात किसमें जाना है? बिंदु में जाना है। जो बातें बीत चुकी ड्रामा में वो क्या है? वो भी बिंदु है। तो देखा जाए वास्तव में सारा जो हिसाब किताब वो बिंदु के ऊपर ही है। तो ये जो बिंदु है, और इस बिंदु में ही सिंधु, ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। ज्ञान का चिंतन कहो या योग की विभिन्न अनुभूतियां कहो, वो हमारे बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होने से होती है। जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो ज्ञान का एक नए नए विचार पैदा होते हैं, नए नए संकल्प आते हैं, नई नई भावनाएं पैदा होती हैं। देखा गया है चिंतन तभी हमारा प्रखर बनता है जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर चिंतन करते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, ये जो स्थिति है बिंदु रूप की स्थिति, बहुत शक्तिशाली स्थिति है, एटमिक एनर्जी की तरह है। साइलेंस की शक्ति भी बिंदु में समाई है, और जो साइंस की शक्ति है इन्वेंशन कर रहे हैं वो भी बिंदु में है। बाबा ने कहा, जो चांद में जाता, जैसे गीत में भी था, दशमलव दिया तो मनुष्य चांद पर गया, तो एक मुरली में बाबा ने भी कहा कि ऊपर अगर चांद पर भी जाते तो कौन जाता है? बिंदु जाता है। तो सारा ये जो बिंदु के आधार पर ही पूरा संसार चल रहा है, बिंदु के आधार पर ही ये जीवन चल रहा है। तो जब हम बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होते हैं, जो हमारे आंतरिक गुण है वो बाहर फिर प्रदर्शित होते हैं, हीरो पार्ट प्ले कर सकते हैं। और हीरो पार्ट प्ले अर्थात हमारी दृष्टि, वृत्ति, भावनाएं, कृति, ये सब हमारे में परिवर्तन हो गया, विशेष परिवर्तन हो गया। जो दृष्टि हमारी पहले थी भी वो दृष्टि नहीं है, जो हमारे संकल्प पहले थे वो संकल्प नहीं है, महान परिवर्तन हो गया है। जैसे संसार में जो हीरो होता है, तो हीरो की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अर्थात उसकी चाल चलन, उसका देखना, बैठना, उठना, चलना, उसकी एक्टिविटी, सब परिवर्तन होती है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे विश्व के आधार मूर्त हो, हीरो हीरोइन हो, हीरो पार्टधारी हो। तो उस स्थिति में स्थित होने से जो हमारे जो संकल्प बदलते हैं, हमारे जो विचार बदलते हैं, उसके आधार पर हमारा फिर जीवन नेचुरल बनता जाता है। अगर हम उस स्थिति में स्थित हैं तो जैसे वो हीरो श्रृंगार करता है, उसी तरह हम बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम आत्मा हो, लेकिन कौन सी आत्मा हो? तो कितने प्रकार के सोमान की माला हमारे सामने आ जाती है, वो हमारे जैसे श्रृंगार है। तुम महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, तो ये सारे आत्मा के सोमान है। और जब इन सोमान में हम स्थित होते जाते हैं, तो आत्मा को जैसे हम श्रृंगार कर रहे हैं, तो आत्मा उस जीरो अवस्था में स्थित रहने से फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। और जो दूसरा हीरो है, वो और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखता है? एक तो उसकी पर्सनैलिटी होती है, दूसरा जब वो फिल्म में अपना पार्ट प्ले करता है तो उसके पीछे बहुत सारी बातें समाई होती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा त्याग होता है। अगर उसको उस क्षेत्र में सफल होना है तो उसको बहुत सारी बातों का त्याग करना पड़ता है, वो अपना समय दूसरी बातों में नहीं गंवाएगा, समय का पूरा पाबंद होता है। समय पर पार्ट प्ले करना तो उसको समय पर ही जाना पड़ेगा। उसी तरह संगम युग जो हमारे पूरे कल्प का जो ये विशेष समय है पार्ट प्ले करने का, ये यादगार पूरे कल्प के लिए हम बना रहे हैं, तो इस समय को भी हम व्यर्थ अगर गवाएंगे तो हमारा पार्ट कैसा रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा समय के ऊपर भी हमें पूरा अटेंशन रखना है। फिर उस जो हीरो है उसमें त्याग की भावना बहुत होती है, उसको नींद का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको प्रसिद्ध होना है तो बहुत सारी बातों का त्याग करना पड़ता है। तो उसी तरह से ब्राह्मण जीवन में अगर हीरो बनना है तो कौन सी बातों का त्याग करना पड़ता है? सवेरे से लेकर रात्रि तक जो चीजें अमर्यादित हैं, जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं संघ की संभाल करनी है, कुसंग में नहीं जाना है, या कौन कौन से व्यर्थ की जो हमारी फाइलें अंदर जो अभी भी खुली हैं उनको बंद करना है, तो त्याग भी जीवन में अति आवश्यक है। चाहे वो खाने का है, सोने का है, बैठने का, उठने का, कहीं भी है, तो त्याग भी जरूरी है। इसी तरह वो श्रृंगार भी करता है हीरो, टाइम का भी पाबंद होता है, त्याग की भावना होती है और उसको हमेशा प्राप्तियां सामने रहती हैं कि ये मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं तो कितनी बड़ी प्राप्ति होगी, तो हमारे सामने कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं। ये बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तो वास्तव में विश्व का मालिक तो बाद में बनेगी, लेकिन अभी जो सुख है स्वयं का मालिक बनने की, स्वयं का मालिक विश्व का मालिक बनने से भी बड़ा वास्तव में इस संगम युग के ऊपर, क्योंकि वहां तो सारी विस्मृति है लेकिन इसमें हमको स्मृति है। तो उसको प्राप्तियों का भी नशा रहता है कि ये मुझे प्राप्ति होगी, और उसको जो हीरो होता है बहुत सारे लोग उसकी नकल करते हैं, जैसे उसका स्टाइल होगा उसी तरह से चलेंगे। तो बाबा ने भी कल कहा ना कि तुम्हारी चलन से सेवा हो, देख तुम्हें देख के दूसरे परिवर्तन होने का उनको संकल्प आ जाए। तो जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो हम व्यवहारिकता में आते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, हमारी जो संबंध संपर्क में जो भी हम रिलेशन है, तो वहां भी जैसे सेवा हो जाए उपस्थित होने से कि इनके जैसा हम कैसे बने, बोल कैसे परिवर्तन हो, कौन से ऐसे हमारे बोल मुख से निकलें, हमारे मुख से निकलें कि दूसरों को परिवर्तन करने का भी संकल्प आ जाए कि हमको स्वयं को परिवर्तन करना है। तो उनके अंदर ये चीज होती है कि कैसे उनको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो जो हीरो होता है और क्या क्या होता है उसमें, एक्यूरेट होता है, वो उस समय पर उसको पहुंचना होता है, हर जो पार्ट है उसको एक्यूरेट प्ले करना होता है, और उसके लिए बहुत लंबे समय का उसका वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए लंबे समय से उसकी प्रैक्टिस रहती है। इसलिए बाबा यहां भी कहते हैं कि अंत मते सो गते एवरडी, अचानक और बहुत काल का अभ्यास। तो हमें सेकेंड में जो जीरो इस बॉडी से निकलकर जीरो अवस्था को प्राप्त करना है, या जो हमारी ओरिजिनल अवस्था है, प्राप्त करना नहीं वास्तव में है ही हमारी अवस्था, तो लंबे समय का इसका भी अभ्यास चाहिए, अशरीरी अवस्था का अनुभव। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बीज रूप बच्चे हैं वो हमेशा मुख्य रूप से चलते फिरते चार बातों का अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे उसकी। एक तो ये था कि चलते फिरते वो अनुभूति करेंगे कि जैसे शरीर से मैं अलग आत्मा हूं, ये जैसे एक वस्त्र है, जैसे मैंने वस्त्र धारण किया हुआ है, मैं जब चाहे इसको छोड़ सकता हूं, जब चाहे इसमें आ सकता हूं, ये चलते फिरते उसकी अनुभूति होगी। और दूसरा, एक सेकंड में इस बॉडी से डिटैच, चाहे वो सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, या इस देह में, ये दूसरी अनुभूति होगी। और तीसरा, अपने को साक्षात अनुभव करेंगे, ये नहीं कि आत्मा का साक्षात्कार, बल्कि वो साक्षात स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं सचमुच इसमें बैठी हुई चमकता हुआ सितारा हूं। और चौथा एक और था, वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चलता फिरता आसमान में उड़ता पंछी हूं। तो ये निशानियां बाबा ने कही थी कि बीज रूप जो स्थिति की निशानियां, अलौकिक निशानियां, ये चलते फिरते उसकी अनुभूति है। तो ये हमको बहुत काल का अभ्यास करेंगे तो भी हम इस जीरो की अवस्था को सहज रूप से, संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लंबे काल का अभ्यास तो ही हमारा हीरो पार्ट प्ले होगा। और हीरो में क्या होता है, अलर्ट है जी, हाँ, क्योंकि वो खतरों का खिलाड़ी होता है। जब वो कर्म क्षेत्र पर जाता है तो बहुत सारे खतरे उसको मोल लेने पड़ते हैं, नहीं तो वो हीरो नहीं माना जाएगा। अगर फिल्म में फाइटिंग ही ना हो उसको कौन देखेगा, तो उसमें स्टंट होता है और उसको फिर वहां सहन भी करना पड़ता है। जब उसको मार खानी होती है तो सामने वाला मारता भी है और उसको उस तरीके से सहन भी करना है, एजुकेशन भी होनी चाहिए उस तरीके से। तो सहन शक्ति है, एडजस्ट करने की शक्ति है। अगर वो पार्ट प्ले कर रहा है, प्ले करते करते अगर मुख से ऐसा बोल निकलता है वो तुरंत बदलने का चेंज होना चाहिए उसको, है ना, नहीं अगर मुख से निकलेगा तो सारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले निकला था ना कि हम डॉक्टर लोग भी ऐसे करते हैं, तो समय पर फुल स्टॉप लगाना भी आना चाहिए। तो एडजस्ट समय अनुसार कैसे हमें अपने, अगर हम उस माहौल के अनुसार अगर हम कुछ तैयारी करके आते हैं और सामने का माहौल कुछ और है वो, तो हमें उस माहौल के अनुसार अपना जो है, चाहे हमारे मुख से बोल निकले व्यवहारिकता, उस माहौल के अनुसार हमको एडजस्ट होने की भी कला होना चाहिए। तो ये भी एडजस्ट होने की है। धनी धनी वो, हाँ धनी भी होता है वास्तव में, धनी बनने के लिए वो पार्ट प्ले करता है। तो एडजस्टमेंट होती है, अलर्ट होता है, एक्यूरेट होता है, अटेंटिव होता है, अभ्यास करता लंबे समय, त्याग की भावना होती है, समय का पाबंद होता है और मेकअप उसका, हाँ सबसे बड़ी बात है उसको विश्वास भी होता है कि मेरी विजय निश्चित ही है, मैं सफल नहीं होगा तो कौन सफल होगा, और वो सफल होते भी हैं। एक बार वो उस क्षेत्र में अगर कूद गए तो अच्छी तरह से वो उसमें जाने के बाद उसकी जो हकीकत है उसको जानकर ही वो अपनी सफलता को अर्जित करते हैं। तो उसी तरह से यहां भी आत्मविश्वास कि बाबा ने कहा तुम कल्प कल्प के विजेता हो, विजय तुम्हारी निश्चित हुई है, सफलता तुम्हारी हुई पड़ी है, तुम प्राप्तियों से संपन्न हो, तो ये भी उसमें एक विशेष होती है कि वो उसमें विश्वास होता है, संगठन की शक्ति। हाँ तो हीरो वास्तव में अकेला बैठ के कोई हीरो नहीं बनता है, फिल्म में संगठन होता है और उसको, हाँ हीरोइन से एडजस्ट होना पड़ता है। कमलेश भाई बोल रहे हैं स्वयं की चेकिंग उसकी जरूरी होती है, मेकअप उसका कहते हैं, कैमरे के सामने जाना है तो कैसे उसकी, तो संगठन में उसको मिलके चलना पड़ेगा, चाहे वो कॉमेडियन है या विलेन है, कोई भी है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सबकी उसको सुननी पड़ती है। ऐसे नहीं कि वो अपनी मन मत करेगा, तो वहां एक निर्माणता का गुण जैसे दिखाई दे रहा है, वो उसको निर्माण होना पड़ता है तभी वो सक्सेस होता है। तो उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण संगठन में हीरो हम तभी बन सकते हैं जब सबके साथ मिलकर चले। अगर हम किसी से किनारा करते हैं तो हीरो का पार्ट हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए किनारा नहीं करने का, क्योंकि संगठन में आने से ही हमारा पता चलता है। जीरो की तरफ जाएंगे, हाँ जीरो की तरफ अगर हम जाते हैं तो इधर से कैसे कम होंगे, न्यारा होके जाएंगे, हाँ, और उस जीरो के पीछे सब अपने आप आएंगे, क्योंकि वास्तव में तो सभी जीरो ही हैं। जीरो जीरो को आकर्षित करेगी, जैसे बाबा ने कहा पवित्रता पवित्रता को आकर्षित करती है, इसी तरह अगर हमारी जीरो की स्थिति है तो जीरो की स्थिति अपने आप दूसरों को आकर्षित करेगी। इसलिए दादियों का आकर्षण क्यों है, क्योंकि लंबे समय से वो उस स्थिति में स्थित रहे हुए और यही हमारी अंतिम स्थिति है। तो इसमें हमको लंबे समय से स्थित रहना है कि वो आकर्षण, और हीरो भी बहुत आकर्षण वाला होता है, तो उसी तरह हम गुणों से कितने आकर्षित हुए हैं, दिव्य गुणों से कितने श्रृंगारित हैं हम स्वयं को। और हीरो में क्या होता है, निर्भय होता है, हाँ निडर होता है, लक्ष्य उसको सामने होता है, जो भी उसको लक्ष्य अर्जित करना है तो कितने भी विघ्न आए, ऑब्स्टेकल आए, कितनी भी बाधाएं आए, रुकावटें आए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है, फिर लक्ष्य उसके सामने है तो वो निरंतर अपनी जो यात्रा है वो निर्विवाद रूप से आगे रखने का प्रयास करता है और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को अर्जित करता है, क्योंकि मन में उसके पहले से विश्वास है, निडरता है, अनेक प्रकार के गुणों का वो धनी है, इसलिए वो हीरो बनता है। और हीरो अगर संसार में वो सफल हो जाते हैं फिर संसार उनके पीछे चलता है, संसार जैसे उनको भगवान मानने लगता है ना। और क्या हीरो में होता है, आदर्श बनते हैं समाज के लिए, वो आदर्श बनते हैं। और जो अभी गीत में था कि यहां की माटी को भी मैं नमन करता हूं, तो भारत में तो ऐसे है कि कीड़े मकोड़े की भी पूजा होती है, इतने यहाँ के महान लोग हैं। लोग तो है ही है लेकिन पूजा करने वाले महान, और जो मिट्टी कीड़े मकोड़े और चौरास्ते जो भी है पेड़, कितनी पूजा होती है। तो भारत देश कितना महान है ये तो मैं सुन रहा था, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में ऐसे होता नहीं है। तो भारत का भगवान भी दीवाना है। तो ये चीजें थी, जीरो बाप के हीरो बचे अपने आप को। हाँ हाँ, एक चीज उस लिखी अपने बोली नहीं है, वो हमेशा उसके अंदर एक सीखने की ललक बनी रहती है। ये नहीं सोचता कि मुझे अब सब आता है, हर एक दिन में वो उसके अंदर एक नवीनता नवीन विचार जागृत होता है कि मुझे कुछ नया सीखना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक से वो सीखता है। तो हीरो जो है हमेशा उसके सीखने के बनी रहते हैं। जब हमने अगर ये सोच लिया कि हमने सब कुछ सीख लिया तो वहीं से हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान की भूख लगी रहनी चाहिए। भूख अगर हमें नहीं है, अगर हमने सोच लिया कि ज्ञान से तो हम परिपूर्ण हो गए, तो वो डाइजेशन नहीं होता है, फिर वहीं से हमारा पेट खराब। इसलिए जीरो स्थिति माना पेट साफ, तो ही मेरे भोजन पचेगा। इसलिए मन बुद्धि बिल्कुल खाली होगा, कोरे कागज की तरह होगा, तो वो हमारी स्लेट में बैठेगा। इसलिए बाबा ने कहा जो पड़ा सब मिटा दो उसको, खाली होकर क्लीन और क्लियर बुद्धि। जो एक मुरली चित्री चली थी ना, कि दो कारण बताए थे बाबा ने कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, संक्षेप में दो कारण बताए थे अपवित्रता के, एक तो बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है, दूसरा अटेंशन अर्थात सावधानी नहीं है। तो ये जो है सीखने की ललक हमें हमेशा ये भी बनी रहनी चाहिए। मल्टी टैलेंट होता है, हर प्रकार का वो रोल प्ले करने के लिए हमेशा रेडी, एवर रेडी रहता है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा तुम बच्चे ऑलराउंडर हो, कोई भी सेवा मिले, चाहे वो बर्तन मांजने से लेकर ऊपर तक, और सबसे अच्छी सेवा बर्तन मांजने की है, झाड़ू करने की सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि उसमें ज्यादा बुद्धि और उसमें बाबा को हम ज्यादा याद कर सकते हैं, दूसरों में बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है। और वो इस तरह की जो सेवा है ये हम सबको बहुत आगे बढ़ाने के निमित्त बनती है। जो भी ब्राह्मण जगत में, जब विशेष करके जो हाई स्टेटस वाले लोग नहीं है, दूसरे जब ब्राह्मण जगत में कदम रखते हैं तो पहले सेवा सेंटर में कौन सी मिलती है, झाड़ू पोछा बर्तन सकीरिम में पायो तीन रतन, ये वाले। और ये जो सेवा है ये बहुत आगे बढ़ाती है, बहुत सारे ब्राह्मणों की अनुभूति होगी सूक्ष्म रूप से, क्योंकि है जी हाँ, जो भी मेथड वाला होमवर्क मिले उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेने का। तो वो जो सेवा है वो सचमुच आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो सेवा जब हाई स्टेटस वाले नहीं करते हैं और वो सेवा करने वाले को देखते हैं तो उनके मन में भी शुभ भावना जागृत होती है। तो वो सूक्ष्म में जो दुआएं हैं वो आगे बढ़ाती हैं। इसलिए सेवा तो जरूर करनी चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन, मल्टी टैलेंट है ये हो गया। इसलिए हमारे चिमन भाई ये मल्टी सेवा वाले ना आए नहीं आज, तो देखो कितनी सारी दुआएं हैं, कुछ भी सेवा मिल जाए बस चल पड़े। अच्छा, उनमें ये विशेष देखा, चाहे ज्ञान में है चाहे ज्ञान में कोई नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, सब एक बराबर है। हम उनको कई बार बोलते भी है जब वो उतराते हैं ट्रांसपोर्ट में, उनको इस चीज से कोई लेना देना ज्ञान में आया नहीं है, सबको बराबर बता देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और क्या होता है हीरो में,
डायलॉग होता है।
हाँ डायलॉग भी होता है, डायलॉग उससे माने जो बोलना है तो पहले से उसकी प्रैक्टिस होती है और एक्यूरेट बोलना होता है, ऊपर नीचे महावाक्य हो जाते हैं उसके वो। हाँ तो यहाँ भी ये लिखा है, पॉइंट रह गया इधर, ये आपने संकल्प किया ना, टच हो गया पहले से। तो इसमें अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, कोई मेरा प्यार नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी प्रकार की कोई इसमें संकुचित भावना नहीं है। और एक और चीज रहेगी थी कि हाँ जी, अडिग होता है जीरो, अपने निर्णय पर अडिग होता है हीरो, वही जीरो की स्थिति में रहेगा तो हीरो बनेगा। तो एक और चीज थी कि अगर हम जीरो से उतरते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्नों के हम बाहर लग जाते हैं, क्यों क्या कैसे कब कहां, इस जंजाल में उलझे रहते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है, तो हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है तो रुक जाती है। इसलिए जीरो की स्थिति में स्थित रहने से अनेक प्रकार के जंजीरों से हम छूट सकते हैं, जो आत्मा अनेक प्रकार के बंधनों में बंधी हुई है। तो सारे इसका जो सार यही होगा कि जीरो स्थिति को उपलब्ध करने के लिए लंबे समय का अभ्यास, कि मैं कौन सी आत्मा हूं, महान आत्मा, देवात्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा। और सच में देखा गया लंबे समय के अभ्यास के बाद इसकी अनुभूति होने लगती है, नहीं तो अगर हम थोड़ा समय करते तो कहीं ना कहीं दिल शिकस्त होने की संभावना बन जाती है कि हो तो नहीं रहा है। लेकिन बाबा ने कहे तो जब तक जीना तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अगर ऊपर नीचे कभी होता भी है तो उसमें डिसअल्टेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो तो हो ही गया, उसको तो कर चार नहीं सकते। तो उसको भी हम देख के कभी कभी खुश हो जाते हैं कि तो होना तो हो गया, काम खत्म हो गया इसका भी, तो इसलिए डिसअल्टेड नहीं होना है। ओम शांति।